लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। पृथ्वी पर चार प्राणी बहुत छोटे किंतु बहुत समझदार होते हैं। चींटियां निर्बल होती हैं किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्र करती हैं। बिज्जू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है किंतु वह राजाओं के महलों में पाई जाती है। श्रोताओं, ये थी सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 24 से लेकर 28 तक के पदों में निहित आगूर की सूक्तियां। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन सूक्तियों में आगूर मानवीय ज्ञान और समझ की सीमाओं की तलाश करता हुआ इस तथ्य को प्रकाशित करता है कि सच्चा ज्ञान ईश्वर से आता है जो मानवीय समझ से परे है। संसार के सबसे छोटे प्राणियों की चर्चा कर वह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराता है कि छोटे होते हुए भी इन प्राणियों का महत्व बहुत अधिक है, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगूर ने जिन चार छोटे प्राणी को गिनाया वे बहुत छोटे हैं तथापि अपने कामों में सक्षम और छोटे होते हुए भी बुद्धिमान है। उनमें अपार क्षमता है। उनकी बुद्धि को हम मनुष्यों ने प्रशिक्षित नहीं किया अपितु वे जो कुछ कर सकते हैं वह सब उनमें स्वजात ही प्राकृतिक रूप से ही आ गया। अस्तु किसी को भी उसका कद देखकर छोटा न समझ लिया जाए, उसके अंतर की शक्ति को पहचाना जाए। यहाँ उन लोगों के लिए संदेश है जो अपने अहंकार और धन के घमंड के कारण दूसरों को अपने से छोटा मानते हैं। वस्तुतः आकार बुद्धिमता का निर्धारण नहीं करता। बड़े भी मूर्ख हो सकते हैं और छोटे भी बुद्धिमान हो सकते हैं। वे न केवल बुद्धिमान होते हैं बल्कि बहुत सक्षम भी होते हैं। इन चार उदाहरणों को सूचीबद्ध कर आगूर ने बुद्धिमता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता जो बलशाली अथवा विशाल कद वाला होता है, बल्कि वही बुद्धिमान होता है जो कद में छोटा होकर भी विनम्रतापूर्वक कुछ कर लेने में सक्षम होता है। चींटियां और बिज्जू आलसी नहीं होते और उचित समय पर अपना काम कर लेते हैं। तात्पर्य यही कि कड़ी मेहनत से व्यक्तिगत कमजोरियों पर काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, यानी कि टीम वर्क से जीत हासिल की जा सकती है। और छिपकली का महलों में पाए जाने से तात्पर्य यह कि अपनी प्रतिभा और अद्वितीय कौशल का उपयोग करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, व्यक्ति सभी सृजित प्राणियों का सम्मान करे और प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए उचित रीति से अपना जीवन यापन करे।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 29 से लेकर 33 तक के पदों में आगूर कहता है, तीन प्राणियों की चाल मनोहर है और चार की ठवन आकर्षक। सिंह जानवरों में सबसे शूरवीर, जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। इठलाता हुआ मुर्गा, बकरा और अपनी सेना के आगे आगे चलने वाला राजा। यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य किया या बुरी योजना बनाई है तो चुप रहो, क्योंकि दूध मथने से मलाई बनती है, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता है और क्रोध करने से झगड़ा उत्पन्न होता है। श्रोताओ, तीन चीजें हैं जिनकी गति राजसी होती है। वस्तुतः यहाँ चौथी बार आगूर ने चार अद्भुत चीजों तथा राजसीपन के चार उदाहरणों को समझाने के लिए तीन और चार संरचना का उपयोग किया है। शेर जानवरों में सबसे शक्तिशाली होता है, अपना सिर उठाकर चलता है और कभी पीछे नहीं हटता। इस प्रकार वह साहस और राजसीपन प्रदर्शित करता है। फिर मुर्गे, बकरे और सेना के आगे आगे चलने वाले सेनापति राजा का दृश्य प्रस्तुत कर आगूर इनके ताजगीपन, राजसीपन, तेजी और दृढ़ संकल्प की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है और हमसे भी आग्रह करता है कि इन्हीं के सदृश शक्तिशाली, तेज दिमाग वाले और राजसी ठाट वाले हम भी बन सकते हैं, किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब हम आलस, जिद्दीपन और घमंड का परित्याग कर अपने कामों में मन लगाएं। फिर 32वीं और 33वीं सूक्तियों में आगूर कहता है, यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य किया या बुरी योजना बनाई है तो चुप रहो, क्योंकि दूध मथने से मलाई बनती है, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता है और क्रोध करने से झगड़ा पैदा होता है। यहाँ आगूर हम सबको बुराई के विरुद्ध सचेत करता है, कहता है कि यदि आप अपने दिमाग की शक्ति और संसाधनों का उपयोग बुराई की योजना बनाने के लिए करते हैं तो रुकें, अपने मुंह पर हाथ रखें और एक भी शब्द न बोलें, क्योंकि कहता है, दूध मथने से मलाई बनती है, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता है और क्रोध करने से झगड़ा उत्पन्न होता है। मतलब स्पष्ट है कि यदि आप किसी चीज को मरोड़ेंगे, उसे निचोड़ेंगे या दबाएंगे तो वैसे ही होगा जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है और नाक को मरोड़ने से खून, तथा क्रोध की अभिव्यक्ति संघर्ष और झगड़े का कारण बनती है। आगूर का परामर्श है कि हम बुद्धिमान और विवेकी स्त्री पुरुषों की तरह ऐसा व्यवहार कदापि न करें। श्रोताओ, यहाँ अभिप्राय यही कि यदि आप खुद को ऊंचा दिखाने अथवा आत्म प्रशंसा की मूर्खता कर रहे हैं तो तुरंत ऐसी आदत छोड़ दें तथा स्वतः को दीनहीन बना लें, ताकि प्रभु आपको अन्यों में ऊंचा दिखाएं। संसार भर में बिखरे 12 वंशों को पत्र लिखते हुए संत याकूब कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा,
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो ने पराग्वे के असुनसियोन में एकत्रित लातिनी अमेरिकी धर्म शिक्षकों को धर्म सभा के मार्ग में अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहन दिया। संत पापा लियो ने लातिनी अमेरिकी कैटेकिस्ट सोसाइटी की 13वीं आम सभा को अपना संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि वे नाजरेत के यीशु पर व्यक्तिगत चिंतन करते हुए उन पर अपनी धर्म शिक्षा माला को केंद्रित करें, क्योंकि वे ही हमारी धर्म शिक्षा माला के केंद्र बिंदु हैं। धर्म प्रचारकों की सभा को अपना प्रोत्साहन देते हुए संत पापा लियो ने आगे कहा कि हम यीशु ख्रिस्त के ज्ञान पर उन्हें दूसरों के लिए घोषित करने की अपनी चाह को नवीकृत करें, जो हमें सुसमाचार के प्रचार में पुख्ता बनाता है, जिससे दूसरे अपने विश्वास में मजबूत होते हैं। लातिनी अमेरिका में 1995 को गठित धर्म प्रचारकों की सोसाइटी लैटिन अमेरिका के विभिन्न भागों से धर्म शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्वानों और शोधकर्ताओं का एक संघ है, जो धर्म शिक्षा के माध्यम से लातिनी अमेरिका के कलिसा में सुसमाचार प्रचार की प्रेरिताई में योगदान दे रहा है। इस वर्ष की संगोष्ठी और अध्ययन दिवस को 7 से 11 जुलाई तक निर्धारित किया गया है। इतालवी पत्रिका पियात्सा सन पेत्रो का जुलाई संस्करण युवाओं की जयंती के लिए समर्पित किया गया है। इस संस्करण में संत पापा लियो ने जायरा 3 बच्चों की एक युवा माता के पत्र का जवाब दिया है, जहां उन्होंने शांति के मौलिक अधिकार पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जायरा ने वर्तमान समय में शांति की चाह पर अपने चिंतन व्यक्त करते हुए यह सवाल किया है, अगर विश्व युद्ध छिड़ जाए तो बच्चों के सपनों का क्या होगा। उनके माता पिता द्वारा किए गए त्याग, घर खरीदना, उन्हें स्कूल भेजना, उनके भविष्य के लिए बचत करने का क्या होगा। शांति एक मौलिक अधिकार है, जायरा तर्क देती है और अपने पत्र को इस मार्मिक प्रश्न के साथ समाप्त करती है, हम इसे क्यों भूल गए हैं। संत पापा लियो जायरा के इस सवाल के उत्तर में कहते हैं, यह एक पुकार है जो ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर कठिन और भ्रमित करने वाले क्षणों में हमारी मदद करते हैं। संत पापा कहते हैं कि हमें ऐसे समय में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। ईश्वर का प्रेम हमें निरंतर मानव परिवार की भलाई और एकता हेतु कार्य करने को प्रेरित करता है। संत पापा लियो अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, शांति ख्रिस्तीय और अन्य धर्मों की समझ के अनुसार प्रथम और सर्वप्रथम एक उपहार है। वे कहते हैं, हम इसे केवल कार्य करने के द्वारा हासिल करते हैं। यह एक उपहार है जो हमें चुनौतियां देता और हम सबों से सहभागिता की मांग करता है, चाहे हम किसी भी संस्कृति और धार्मिक पृष्ठभूमि के क्यों ना हों। शांति का यह उपहार हृदय में निर्मित होता है। अभिमान और द्वेष को जड़ से उखाड़कर अपने शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करके, क्योंकि हम न केवल हथियारों से बल्कि शब्दों से भी घायल या नष्ट कर सकते हैं। संत पापा लियो जायरा के सवाल का ईमानदारी से उत्तर देते हुए कहते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति लगती है जैसे कोई समाधान नहीं है और स्थिति बिगड़ने की संभावना वास्तविक लगती है। वे कहते हैं कि यही वह समय है जब हमें हृदय शुद्धिकरण शांति के रिश्ते बनाने हेतु आह्वान किया जाता है। संत पापा ने कहा, हमें शांति हेतु रोज दिन सामुदायिक और व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने की जरूरत है। उधर दक्षिणी सूडान की 14वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धर्माध्यक्ष क्रिश्चियन कालसारे ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे अमूर्त आदर्शों से आगे बढ़ते हुए और शांति को व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप में कार्य में आलिंगन करें। 9 जुलाई के समारोह के पूर्व बेंटियू के धर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि शांति को हमारे ठोस चुनाव और नैतिक निष्ठा में दिखाने की जरूरत है। सभी लोगों को अपने दफ्तर के कार्यों में ईमानदारी, देशवासियों का नेतृत्व करने के अलावे लोकहित में अपने कार्यों को करने की जरूरत है, न कि किसी एक दल के लिए जिससे पूरे देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि हम बहुधा शांति के बारे में कहते हैं, लेकिन हम लड़ाई करते हैं। शांति कोई अमूर्त विषय नहीं है, बल्कि यह रोज दिन के जीवन और एक साथ मिलकर निर्माण करने की चीज है। देश में 2026 में होने वाले संभावित चुनावों को देखते हुए धर्माध्यक्ष कालसारे ने दक्षिणी सूडान के लोगों से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और नागरिक उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु तैयारी करने का आह्वान किया। उधर संत पापा लियो ने बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस का संदेश प्रेषित करते हुए अपने ट्विटर संदेश में लिखा, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति ईश्वर की निष्ठा हमें इस बात की शिक्षा देती है कि बुजुर्गावस्था हमारे लिए एक धन्यता है, एक सच्चा सुसमाचारीय आनंद जो हमें उदासीनता की उन बाधाओं को तोड़ने हेतु प्रेरित करता है जिसमें वृद्ध लोग अक्सर खुद को घिरा पाते हैं। वहीं इतालवी डाकघर के प्रेस कार्यालय ने इस बात का खुलासा किया कि संत पापा लियो के लिए 100 किलो की डाक सामग्री प्रतिदिन फ्यूमिचिनो के हवाई अड्डे में पहुंचती है। रोम के ठीक बाहर फ्यूमिचिनो हवाई अड्डा के गोदाम में संत पापा लियो 14वें के लिए और वैटिकन को संबोधित डाक प्रतिदिन संग्रहित की जाती है। इसमें मुख्य पोस्ट कार्ड, पत्र, ग्रीटिंग कार्ड के अलावे हस्तलिखित नोट भी अक्सर कुछ पंक्तियों में अपनी भावनाओं से भरे होते हैं। विदित हो 28 मई 2025 को प्रोविस्ट का वैश्विक कलिस्य के धर्म गुरु संत पापा चुने जाने के उपरांत प्रतिदिन ढेर सारा प्यार और शुभकामनाओं से भरा संदेश उनके लिए निरंतर आना जारी है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।